के गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे। अभी ये छात्रों ने एक पोस्टर का यहां विमोचन किया। वास्तव में दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण का पर्व है। यद्यपि वो निर्वाण बहुत खुशी की बात है, दीपावली के दिन भगवान महावीर को वो चीज उपलब्ध हुई थी जिसके लिए वे कई भवों से निरंतर प्रयास कर रहे थे, इसलिए इससे बड़ी और खुशी दुनिया में क्या हो सकती है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मुक्ति ही है ना। दीपावली के दिन में मोक्ष गए थे, इसलिए बहुत खुशी का पर्व है। पर खुशी भी कई प्रकार की होती है। ये उछल कूद वाली खुशी का पर्व नहीं है, ये पटाखा फोड़ने वाली खुशी का पर्व नहीं है, ये लड्डू खाने और खिलाने वाली खुशी का पर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान महावीर हमें छोड़ के चले गए थे। ये संयोग का नहीं, ये वियोग का पर्व है। हमें इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए कि मुहर्रम में और ईद में क्या फर्क है। ये तो वो लोग भी जानते हैं ना, ईद मनाने वाले, कि मुहर्रम शोक का पर्व है और ईद खुशी का पर्व है। तो हमारे लिए जन्म और देह वियोग, देह का धारण करना, दोनों एक से ही, किस बात की खुशी मना रहे हो? धन्य थी वह तेरस जिस दिन हम सबको भगवान महावीर की अंतिम दिव्य ध्वनि सुनने का मौका मिला था। धन्य थी वह तेरस जिसे इस व्यापारी समाज ने धन तेरस बना दिया है। इस व्यापारी समाज से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? क्यों? ये तो भगवान को भी बोरी लगा के बेच सकता है। इसे बोरी लगा के बेचने और खरीदने में बहुत रस है। इसने इंद सौधर्म को तो कई दफे नीलाम कर दिया। इसका बस चले तो भगवान के माँ बाप की भी नीलामी कर दें। कभी कभी मुझे विकल्प आता है, ये क्षत्रियों और ब्राह्मणों का धर्म ये बनियों के हाथ कैसे लग गया? क्योंकि भगवान महावीर क्षत्रिय थे और गौतम स्वामी आदि जो गणधर थे वो ब्राह्मण थे, तो उन्हीं का धर्म हुआ ना ये, ख्याल में है ना। और आज सब व्यापारी कौम है, हैं? तो इतना फर्क तो करो भले आदमी कि किस बात की खुशी मना रहे हो। जब धन्य था वह दिन जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि हमें सुनने को मिली थी, लेकिन जब चौदस को हम गए तो वो दिव्य ध्वनि हमें सुनने को नहीं मिली, लेकिन भगवान के दर्शन मिले थे, प्रवचन नहीं मिला था, दर्शन मिले थे। दर्शन भी कोई कम भाग्य की बात थोड़ी होती है, क्यों? लेकिन जब अमावस्य के दिन गए तो ना प्रवचन मिला और ना दर्शन मिले। अब वो दिन कैसा रहा होगा और लोगों पर कैसा उसका असर हुआ होगा? असली दिवाली तो वो है ना, क्यों? ये तो हम उसका रिपीटेशन करते हैं। जब बच्चा एक साल का होता है तो उसका जन्मदिन मनाते हैं, वो जन्मदिन कौन सा होता है? बोलो बेबी, बोलो कौन सा होता है? पहला, दूसरा? नकली की बात करो तो पहला, और असली को भी शामिल कर लो तो दूसरा, है ना। निर्वाण दीपावली तो एक ही दिन हुई ना, भगवान महावीर मोक्ष तो एक ही दिन गए। अब उसी तारीख को हम हर साल मनाए तो दूसरा तीसरा 2500वां और 2570वां 2500वां 80वां इतने मनाते जाओ मनाते जाओ। तो उस दिन क्या हुआ होगा हमें इस दो मिनट सोचना नहीं चाहिए। उस दिन दीपावली कैसी मनाई गई होगी ये हमको सोचना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। क्यों? उस दिन खूब पटाखे फूटे होंगे, खूब लड्डू खाए होंगे, खूब एक दूसरे को मुबारक दी होगी। दिवाली मुबारक, दिवाली मुबारक, कागज मुबारक दे रहे हो कि परसों तक वो बुढ़ा 7-7 घंटा और 12-12 मिनट तक प्रश्न करता था। हम तो थक गए सुनते सुनते, अब आज से छुट्टी मिली है खत्म। इस बात की मुबारक दे रहे हो, काय की मुबारक दे रहे हो? जरा विचार तो करो गंभीरता से कि अपने वे कितने महान भगवान जिनकी दिव्यध्वनि का लाभ हमें मिल रहा था, आज वो हम चले गए और उस दिव्यध्वनि का लाभ हमें नहीं मिल रहा है, तो इस खुशी में ये उछल कूद कहां से आ गई? खुशी का दिन तो है, रंज का दिन तो नहीं है। क्यों? लेकिन हमारे लिए भगवान महावीर के वियोग का दिन है, संयोग का दिन नहीं है, इसलिए इसमें उछल कूद तो किसी कीमत पर होनी ही नहीं चाहिए। माल मसाला खाना और खिलाने की बात तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। यदि इसे मनाए तो क्योंकि भगवान की दिव्यध्वनि खिलना बंद हो गई तो गांव गांव में पाठशाला खोलकर साज सभाएं चालू करकर इस रूप में इसको दिन को मनाया जाना चाहिए। कभी दिव्यध्वनि भले ही चली गई, जब गुरुदेव जी का स्वर्गवास हुआ था तो मैंने एक लेख लिखा था, आपने पढ़ा होगा, सूरज डूब गया। तो हमारी एक आध किताब में है सर, बिखरे मोती में है, किस में है? बिखरे मोती में है ना, सूरज डूब गया। तो सूरज डूबता है तो क्या करते हैं? घर घर में छोटे छोटे दीपक जल जाते हैं, अंधकार से तो लड़ना है ना, रोने नहीं डरते हैं। तो घर घर में दीपक जलना तो अच्छी बात है, ज्ञान का दीपक गांव गांव में, भगवान महावीर की दिव्यध्वनि बंद हो गई तो गांव गांव में साफ सभाएं शुरू हों, अर्थशालाएं शुरू हों, ऐसा कोई हम उपक्रम करें तो वो सच्चा भगवान महावीर की दीपावली मनाने की बात होगी। तो दीपावली में मेरा पूरा 1.5 घंटे का व्याख्यान होता है, तो आज मैं वो नहीं दूंगा पूरा, लेकिन मैं तो आज इन्हें जो इसका ये काम किया ना, इसके लिए कहना चाहता हूं, देखो यदि हमें सारी जैन समाज तक पहुंचना है और सारी भारतीय समाज तक पहुंचना है और उनमें अहिंसा का प्रचार करना है महावीर की वाणी का, तो हमें कुछ ऐसे कार्यक्रम हाथ में लेने होंगे जो सबके हित के हों। वैसे मोक्ष का मार्ग है भी सबके हित का ही है, लेकिन सवाल सबके हित की बात नहीं है, सबको ये समझ में आए कि ये हमारे हित की भी बात हो रही है। पहले तो ये सवाल है कि ये समझ में आए उनके, और ये अहिंसा की बात, अहिंसा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, है? लेकिन यदि हम जो मैंने आपको अभी बात बताई कि हमारे भगवान महावीर चले गए थे इसीलिए हम तो भैया इस तरह खुशी नहीं मना सकते, पटाखा नहीं फोड़ सकते, तो हिंदू क्यों बंद करेंगे? देखें हमारे तो भगवान राम आए थे ना, हम तो फोड़ेंगे। यदि हम चाहते कोई नहीं फोड़े, क्योंकि यदि वो लोग मनाना नहीं छोड़ेंगे तो हम इतने अल्पमत हैं, हम चाह जितना करना हम अपने बच्चों से भी फटाका छोड़ना बंद नहीं करवा सकते। सारा गांव फटाका फोड़ेगा और हमारे बच्चे उसी उम्र के ऐसे बैठे रहेंगे, संभव है क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जब गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को पहुंचाने का संकल्प 50 साल पहले, अभय जी बताना चाहता हूं, बाबू भाई सबसे मिलके मैंने कहा था कि भई ये नहीं चलेंगे आपके प्रश्न। क्या चलेगा? कि अभी अपना पास में एक भी मंदिर नहीं है देश में, सोनगढ़ का मंदिर सोनगढ़ में है बस, कि बंबई में बन गया होगा, और गांव गांव में हमको ये संदेश पहुंचाना है, नए मंदिर भी बनाना हो तो आदमी तो पहले बनना चाहिए। उस गांव में आदमी मुमुक्षु नहीं बनेंगे तो मंदिर कैसे बनेंगे, सही है ना? तो इन मंदिरों में जिनमें अपना कब्जा नहीं है उन सब मंदिरों में अपनी साफ सफाई शुरू करना है। कितना कठिन काम था बोलिए। तो मैंने कहा, बाबू भाई बोले ने सबने माना कि एक रास्ता है इनमें घुसने का, और वो रास्ता है सिद्ध चक्र विधान। पंच कल्याण तो बहुत सीमित होते हैं, कहीं मंदिर बनेगा तो ही तो होंगे। तो हम गांव गांव में सिद्ध चक्र विधानों में जाएं, अपना व्याख्यान करें, उसकी जयमाला का अर्थ करें, उसके छंदों का अर्थ करें। हमने आंदोलन चलाया, ऐसे 100 विधान हमने किए होंगे जिसमें हम विधानाचार्य भी रहे। क्या? और हम उंगली बोलते थे क्योंकि हमारा छंद बोलने लायक तो गला ही नहीं है। अब छंद तो आज भी नहीं बोल सकते क्यों? लेकिन कभी हमने वो देख के उंगली नहीं बोली। किताब बोलते पंडित जी को इतनी सभी याद है उंगली, उन्हें कौन बताया कि इसमें याद करने की क्या जरूरत है? क्यों? उस छंद को ध्यान से सुन लो तो उसमें से ओंगरी बन जाती है। हम बना के बोल देते, झगड़ा खत्म। भाई जल का छंद आ रहा है तो हमें क्या बोलना है? भाई शिक्षक आदि पदे जलम निर्वाह तीसवा, समझ रहे ना? अब 8 कर्म की चर्चा चल रही है। ज्ञानावरणी रहता सिद्ध देव अर्घम निर्वाम तीसवा, मति ज्ञानावरणी रहता सिद्ध देव अर्घम निर्वाम तीसवा, शुद्ध ज्ञानावरणी रहता। अब हमें तो सब याद है, अब जो याद नहीं होगी वो छंद को ध्यान से सुनते तो बन जाती होंगी। देखो जी सब याद है पंडित जी को, पंडित जी का फिर प्रवचन भी सुनते, वह सब सुनते, फिर सब बताते सुनाते, समय सार भी सुनाते। ऐसे हमने गांव गांव में प्रवेश किया है। अब वो जो चीज उस दिन बहुत उपयोगी थी आज वो उतनी उपयोगी नहीं है, आज तकलीफ खड़ी करती है। हमारे मंदिर बन गए। अब गुरुदेव ने तो कभी इसको ज्यादा वो किया नहीं, हमने तो उन मंदिरों में हमारे कार्यक्रम कैसे चलाएं और हम उनको में से मुमुक्षु लोगों को कैसे बनाएं इसके लिए थे। अब वो जो भी चीज उस वक्त इस्टेब्लिश की अपने तत्व की बात सुनाने को, अब वो हमारे उन मंदिरों में होने लग गए। अब वो 6-6 घंटे तक विधान चलता है और प्रवचन गायब होने लग गए कि साहब तुमने भी तो ऐसे ही करे थे। अरे उस वक्त की पोजीशन आज थी, आज तो ये सारे मोक्ष आए हैं, इनको तो 1 घंटा की पूजा बहुत होती है, 1.5 घंटे की लगाओ तो काम चलेगा, इनको तो तत्व ज्ञान सुनने दो। इस समय समय की परिस्थितियां होती हैं। क्या मैंने किस कहा किस तरीके से हमने दिल्ली से देहरादून तक कम से कम 25 पंच कल्याण किए हैं और वो सिद्ध विधान से बड़े नहीं थे, उसे इतनी ज्यादा जनता नहीं आती थी, लेकिन उनके माध्यम से सारे गैर मुमुक्षु समाज को उसमें शामिल किया और वो मुमुक्षु बने। ये बिमल चंद जी जो है ना निरु केमिकल्स वाले, ये उसी के विवेक बिहार के पंच कल्याण की उपज है। उसमें इन्हें स्वधर्मेंद्र बनाया था, ये मुमुक्षु के नाते स्वधर्मेंद्र नहीं बने थे। इनके एक भाई थे सर्व कल्याण मल जी, वो जो थोड़े मुमुक्षु थे और कोई नहीं था, और तब से थोड़े पंच कल्याण से मुमुक्षु बन गए। आप समझ नहीं ना आपके, जिस मंदिर का पंच कल्याण हुआ था वो आज हमारे कब्जे में नहीं, और हम उन्हें घुस नहीं सकते, हम उन्हें विधान नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं कर सकते उस मंदिर में। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको अधिकतम समाज तक पहुंचना है तो उसके अनुरूप हमें नीतियां सुनिश्चित करनी पड़ेंगी, फिर समय समय पर उसमें संशोधन भी करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि हमको मुनि विरोधी कहा जाता था, और जो लोग मुनि गुरुदेव की प्रशंसा करते थे, गुरुदेव के अनुकूल थे, उनको से समागम करके हम उनमें ज्यादा प्रवेश कर सकते थे। दिल्ली में तो अभी मंदिर बना है, वो भी इतनी दूर, एक मंदिर नहीं था ना, लेकिन विद्यानंद जी के सहयोग से 60 जगह अपने मंदिरों में अपने प्रवचन कर जाते थे। क्या जा सकते थे? बोलिए। लेकिन जो हमारा अंदर कलह है और जो हमारे अनंत भाई निमिष भाई जैसे उदार हृदय लोग समाज में आए कि जो जिनसे बहुत धर्म प्रभावना हो सकती थी, उनकी उन्हें समाज की समझ पकड़ नहीं थी, तो उनने दो कहा, चौदह बेटा सुनी पे भला भला करे भगवान, दो काम एक साथ किए, उन्हें हमसे दूर करने का काम, हाँ इनके पास नहीं जाना, बिल्कुल सही कहते हैं आप, बिल्कुल ये करना वो करना। अब जो काम हम नहीं कर पाए ये हमारे विद्यार्थियों ने करके बता दिया। उन्हीं से जब हम किसी को नहीं जा सकते थे, उनसे एक पोस्टर बनवा करके गांव गांव में लगवा रहे हैं। विराग का, अभय जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये बिल्कुल सार्वजनिक काम है ना, अगले मोक्षों का तो नहीं है। हमने जब राखा सरकार रथ निकाला था तो वो भी हमारा पूरी समाज तक पहुंचने का प्रोग्राम था। अगले मोक्ष मंडलों में नहीं गया था, बंबई में गए थे दीपचंद गार्डी, आपको मालूम 100 लोग आए थे कि नहीं आए थे, वो आया था बजाज वाला, कौन बजाज का नाम क्या है, राहुल बजाज हमारे कार्यक्रम में आया, और हमने शाकाहार के माध्यम से ये तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। एक शाकाहार का व्याख्यान करते और एक भगवान आत्मा का, और रिक्शे वाले को घुमा देते, समझे ना। तो वो उन्हें कहा क्या जरूरत है शाकाहार की, इसका मैं कड़कर विरोध करता हूं, ये बिल्कुल सही नहीं है, हम कहां आत्मा आत्मा छोड़ के और ये शाकाहार में लग गए, क्या हो गया है। शाकाहार का प्रचार करके तो मैंने उसका जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था कि सब जैनी सब शाकाहारी हैं, मनुष्य सब शाकाहारी हैं, तो बात करने की जरूरत क्या है। मैंने कहा तुम बड़े अध्यात्मी बन गए ना, अमृतचंद्राचार्य से बड़े अध्यात्मी तो नहीं हो। अमृतचंद्राचार्य के लोग जिन्हें आत्मख्याति लिखी, उन्होंने पुरुषार्थ उपाय पढ़ो और सब मांस मदरा के त्याग का कितना उपदेश दिया है, समन्थ भद्र ने कितना दिया है, तो उसका मतलब सब लोग मांस मदरा खाते होंगे जेनी, आज क्योंकि कोई नहीं खाता इसलिए उसकी जरूरत नहीं रही त्याग की, क्यों हम अमृतचंद्राचार्य से बड़े तो नहीं हो गए। और मैं कहता हूं कि अमृतचंद्राचार्य जैसे अध्यात्मी ने प्रसाद उपाय जैसा ग्रंथ लिखा, इसलिए आज हम सब सदाचारी हैं, यदि नहीं करते तो हम सदाचारी नहीं होते। तो सदाचार का उपदेश देने की जरूरत नहीं है, अवक्ष वक्ष में त्याग करने के उपदेश के देने की जरूरत नहीं है, ये कहां से लाए। लेकिन वो सबके पूरा शाकाहार जो विश्व में 60% लोग हैं वो उन तक पहुंच सकते हैं हम, और ये तत्व ज्ञान भी हम उन तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी चीजों में जिनमें हम अनंत भाई को शामिल नहीं कर पाए थे, इन लोगों ने उनको शामिल कर लिया, हम तो तैयार ही थे, युवाफेडरेशन तैयार ही बैठा है, और हमसे हमारे साथ गठबंधन भी करा दिया है युवाफेडरेशन का, उनका दोनों का कंबाइंड है ना, निकालने का पता ना, नीचे लिखा है ये जो ट्रस्ट है वो अनंत भाई का है, क्या परमी के नाम, पर मुझे क्या दिखाता है पढ़ के बता सर। दोनों ने मिलकर हमसे मतलब उन्होंने कोलोबरेशन किया, क्यों कि पहुंचाएंगे तो हमें ही, आप समझिए ना, इनको गांव गांव में पहुंचाएगा कौन। वो नहीं पहुंचा सकते हैं, फौज तो हमारे कब्जे में है, फौज तो हमारे पास है, जो हम उनके उस संदेश को वहां तक पहुंचाएंगे, जाएंगे कहां। यदि उन्हें सचमुच पूरी समाज तक पहुंचना है तो हमारी शरण में आना ही पड़ेगा, और हमें भी कोई तत्व ज्ञान उन तक पहुंचाना है तो बिना नागर नारायण के तो कुछ होता ही नहीं है। समझे ना, तो वो है, अब हमारे अच्छे उनके संबंध बहुत अच्छे हो रहे, उनको हमारी बात समझ में आ रही धीरे धीरे कि रास्ता तो वो ही है। अरे भाई हम इसके 7 साल के खिलाड़ी हैं, अभी तुम जीरो शुरू हुए हो, क्या जानते हो समाज में कैसे तत्व ज्ञान पहुंचाना, अकेला हमने समझा ही नहीं है, उसको क्रियान्वित भी किया, चालू किया। अब मैं आपको कोई अभिमान के साथ नहीं कहता हूं, जितनी मैंने योजनाएं बना बना के रखी, बाबू भाई ने, पाटनी जी ने, सब ने, खेमचंद भाई ने, राम जी भाई ने, ऐसे हाथ में लेके उनको ठीक है चालू करो चालू करो, आप तो चालू करो, कि कौन करेगा, कि हम करेंगे और कौन करेगा, साकार कौन चलाएगा, हम चलाएंगे और कौन करेगा। गांव गांव गए तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इनने बहुत अच्छा ये काम किया है। ये अभी आपको ऐसे कहने वाले लोग मिलेंगे, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि कहां आत्मा आत्मा छोड़ करके ये फटाका आ गए और अपना दिमाग फटाका में लगे चला दिया, ऐसा आएंगे क्यों, ये सामना करना पड़ेगा तुम्हें है? जब हम पर ऐसा संकट आता है तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, बेटा तुम पर आएगा तब तुम्हारी समझ में आएगा है? और तब तुम्हारी बचत हमें ही करेगी। मैंने प्रवचन का इतना समय निकाल के वो ये बात कही है तो उसका में भी उद्देश्य ही है कि आप लोगों को इस काम को ये जो लड़के कर रहे हैं इनके उत्साह को जितना आप बढ़ा सकते हैं मुझे उतना बढ़ाना चाहिए, समझे ना, तो इनमें वही काम कई गुना फलता है, समझे ना। कोटा में गुरुदेव श्री पधारे थे 8 दिन के लिए, हमारा प्रशिक्षण शिविर था, तो उस वक्त वो भोपाल का हुआ था ना, मेरा सम्मान हुआ था, और उसके बाद में जैन संदेश में एक लेख आया था जो उसके मेरे विरुद्ध बहुत लिखा था। तो रात को जब मैं गुरुदेव जी के पास गया तो वो जैन संदेश गुरुदेव जी के पास रखा था, बोले पंडित जी ये पढ़ा, मैं कहां साहब पढ़ा है, बोले देखो तुम्हारी प्रशंसा करने का भाव मुझे बहुत आता है लेकिन मैं बहुत कम करता हूं, क्यों कि मैं जानता हूं कि अब भी हाथ कितने लोग जलने लगेंगे तुमसे, सब आप गुरुदेव के हैं, समय सार के सामने बोल रहा हूं और टीवी पर लिखे जा रहे हैं, चंदू भाई थे वहां क्या, इतने शत्रु खड़े हो जाएंगे कि तुम, वो सब पता था उन्हें क्या। तो मैंने क्या जवाब दिया था वो भी सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा गुरुदेव श्री ये मैं भी जानता हूं और इसलिए मैं भी चाहता हूं कि भाई काम मर्यादा में ही रहे तो थोड़ी गाड़ी चलती रहे, लेकिन मैं आपको मना इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आपका इतना बोलने से जो मैंने धर्म के रक्षण किताब लिखी तो वो 1000 छपती और 100 वर्ष में नहीं बेच पाती, और आपने उसके बारे में 4 शब्द बोल दिए तो 1 साल में 1.5 लाख तक की 6 भाषाओं में पहुंच गई। तो इससे तत्व प्रचार होता है, इसे जितनी भी आप कहते हैं तो मैं आपको रोकता इसलिए नहीं, मेरे को भी डर लगता कि मैं कह दूं कि आप जरा कम करो, नहीं तो ये सब चारों तरफ का मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है क्या। मैं समय सार की साक्षी से बोल रहा हूं आपको, इसमें कॉमा फ्लैश स्टॉप भी मैंने नहीं बदला है। तो मेरे कहने का मतलब है एक सब नीतिगत बातें होती हैं, ये नहीं बताई जा सकती हैं, सभाओं में नहीं कही जा सकती हैं ज्यादा। अब दिक्कत है कि नहीं समझाओ तो आपकी समझ में नहीं आता, तो उन बातों को आप निरर्थक समझने लगते हैं, समझाओ तो ज्यादा दिक्कत है कि वो सामने वाले भी समझ लेते हैं कि ये तो सिद्ध विधान इसलिए करा रहा है, ये तो पटाखा इसलिए पड़वा करका इसलिए कर रहे हैं। अरे हमको कई स्तर पर काम करना पड़ेगा, देखिए कैसे क्या अपने मुमुक्षुओं के स्तर पर एक पॉइंट, अब फिर पूरी 13 पंथी समाज के लेवल पर, फिर 13 पंथी और 20 पंथी समाज को मिलाकर के एक दक्षिण भारत में हमें काम करना है तो क्या करेंगे बोलिए, जाकर उठाओ क्षेत्रपाल पद्मावति को, एक दिन घुस नहीं पाओगे। मैं अपने बच्चों को समझाता हूं यहां जो मैं सब बैठे यहां, इनको बताया है कि तुम वहां जा रहे हो तो बिल्कुल चर्चा नहीं करना, नहीं तो तुम उन्हें तो उठवा नहीं पाओगे, तुम्हें ही उठ जाओगे।
کیا
جب تم اپنا مندر بناؤ تو اسے دل پر براجمان مت کرنا, لیکن یہ تمہارا نہیں ہے. بولو آپ بتا کر سکتے ہیں کیا؟ آپ چپ نہیں رہ سکتے ہیں, سمرتھن نہیں کر سکتے ہیں, تو ورودھ بھی اس لیول کا تو مت کرو کہ ہمارے کام میں بادھا کھڑی ہو. اب وہ ان کے ساتھ بھی سندھی ملی, پھر ہمیں شیتانبر اور دگمبر کے ساتھ بھی مل کے کچھ کام کرنا پڑیں گے. آپ سمجھے نا, تو ہم ایک پلیٹ فارم وہ الگ بنائیں گے جس میں ہم دگمبر شیتانبر ایک ساتھ بیٹھیں گے, تیرا بندی بھی سندھی کا ایک کامن الگ بنائیں گے, ایک اپنے موکشوں کا الگ بنائیں گے, اور پھر سونگڑی جیپریوں کا ایک کمبائنڈ بنائیں گے, اور دو الگ الگ بھی بنائیں گے کیوں, اور پھر ایک ایسا بنائیں گے کہ ہندوؤں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, پھر ایسا بنائیں گے کہ ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک ساتھ بیٹھیں کیوں, دیش کے لیول پہ کوئی کام کرنا پڑے گا کیوں. تو آپ مسلمانوں کو گالیاں دے کر کے کام کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تو ہم کو یہ سب ذرا تھوڑا سا وویک سے نرنے کرنا پڑے گا. اب دیکھو یہ سیفیا لوگ تو بیچاروں کو فرصت نہیں ہے, وہ یہ ساری کمائی کرتے رہتے ہیں اپنے لیے, تو انہیں کرنے دو, لیکن ان سے نیتی گت نرنے نہیں کراؤ. تو رتن لال جی تھے نا ہمارے بنے, تو ہمارا ان کا یہی جھگڑا تھا کہ وہ کہ میں سب سمجھتا ہوں سماج کی نیتی, اس لیے میں جو کہتا ہوں وہ کرو. میں کہتا ہوں ہمارا آپ کا جھگڑا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب سمجھتا ہوں, اب اس کا نپٹارا کون کرے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں؟ کیا کئی دفعہ ہوا, لیکن کئی دفعہ ہوا یہ جھگڑا کہ نہیں ایسا کرو تو ایسا. میں کہ ایسا نہیں ہوگا, اس کا ریئیکشن ایسا نہیں آئے گا, اس کا ایسا آئے گا, اور میں یہ کہتا ہوں یہ کرو تو اس کا ریئیکشن ایسا آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کئی استروں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ بچے جو کام کر رہے ہیں, ابھی ہم نے ان کا سپورٹ کیا ہے, سمرتھن کیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آتما چھوڑ کر کے اور پٹاخے کا پروگرام بنا لیا ہے, خیال میں آئی نا. لیکن ہم کو ہر استر پر, پھر اہنسک تو ہے ہی نا, جیووں کی ہنسا تو ہوتی ہی ہے نا, وہ جو بات کہی جا رہی وہ غلط تو نہیں ہے نا, اور اپنے یہاں اہنسک تو اپن ہے ہی نا. بھلے ایک جیو دوسرے جیو کا کچھ بھلا برا نہیں کر سکتا, مار جلا نہیں سکتا ہے, کیونکہ نج آیو سے جیوت رہے, یہ بات ہی پکی ہے کیوں. پھر بھی ویوہار کے لیول پر اپنے یہاں دیا کا پرنام کا بھی مہتو تو ہے نا. تو میرے کہنے کا ارتھ ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے, سب لوگوں کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے, جتنے بھی کلینر ہیں لے جاؤ, اپنے اپنے گاؤں میں چپکا دینا, ہو سکتا ہے تو سبھائیں کرنا, ان سبھاؤں میں یہ بات بولنا, سماج کو تیار کرنا, خیال میں آئی نا. اور ہمیں ضرورت پڑے گی, ہم آج بتا پورے, ابھی تو اس جے پور شاخہ نے کام کیا ہے, ہم پورے وا فیڈریشن کو یہ کام میں شامل کرنے کے لیے آج پرستاؤ پاس کرنے والے ہیں. ہم نے وچار کیا ہے کہ پورا علاوہ فیڈریشن گاؤں گاؤں کا اس کام میں تھوڑی اپنی شکتی لگائے. اب وہ پھر وہی آئے گا کہ جی پھر کہاں سے کہاں چلے گئے, تو پھر مجھے گاؤں گاؤں جا کر کے یہ سمجھانا پڑے گا کہ بھیا یہ کیا ہے, کہ ایسا نہیں ہے, یہ بھی کوئی ضروری چیز ہے, تب جا کر کے کام ہوگا. اب اپنا پرکرن چلتا ہے, گاتھا نمبر 137 سے 140 پڑھو بھائی. جیو سدگمین سہ پرنام تو ہونتی راگ آدی ایک سد پرنام گنان جیوس پریمو. और ये हिंदी का ध्यान से जरा अर्थ समझ करके पढ़ना। हाँ बोलो। प्योर न्याय की भाषा है जी, न्याय शास्त्र में ऐसी ही भाषा चलती है ना। अभी मैंने पंचाध्याय में वो न्याय की भाषा, वो इसी टाइप की भाषा है संस्कृत में। अपन ने हिंदी में ऐसे ही प्रयास किया है कि वो बिल्कुल एक फ्लो चलता जाए पर आपकी समझ में आता जाए कि क्या कह रहे हैं। अभी आप दो मिनट मेरी बात सुनो, इधर को नंगाए हटा के, तो आपको सब समझ में ये गाथाएं आ जाएंगी। वो ये कहते हैं कि ये हमारी समस्या होती है ना कि राग होता है तो कैसे होता है, तो अकेले जीव में नहीं होता, अकेले कर्म में नहीं होता, तो दोनों मिलते हैं तब होता है, ये हमारी धारणा है। हल्दी और चूना मिलते हैं तो लाल रंग होता है, नहीं चूना सफेद होता है, हल्दी पीली होती है। यानी बहुत से काम मिलके करने पड़ते हैं, और हम लोग दुनिया में तो मिलके करने के लिए बहुत ही बढ़िया मजेदार चीज है, संगठन बहुत बड़ी चीज है, है? अब जैन धर्म संगठन का धर्म है कि विघटन का धर्म है, समझे? जैन धर्म तो विघटन का धर्म है। मुझे ये याद है कि जो सोनगढ़ में पंच कल्याण हो रहा था जी, कब का सन 74 वाला परमागम मंदिर का, तो तब भाग्य से जो भी परिस्थितियां बनी, लेकिन शाम को रोजाना प्रवचन मेरे ही रहे, और उस वक्त कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, जगन मोहन लाल जी भी बैठे थे, और लालू भाई, बाबू भाई, युगल जी सब बैठे थे। मैंने मना भी किया है ना, हाँ सब थे। फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सब सोच समझ के किया है, बाबू भाई, पाटनी जी, लालू भाई सब ने मिलके, जो वो कमेटी थी ना, आपको तो हम जो कह रहे आपको करना है। अब वो मेरा प्रश्न चला भेद विज्ञान पे, तो वही शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, स्त्री पुत्र आदि से भिन्न, फिर गुणभेद से भी भिन्न, फिर पर्याय से भी भिन्न, तो दो तीन दिन तक ऐसा चला। तो कैलाश चंद जी ने कहा वहीं सभा में सुनते सुनते कि कहां तक भेद विज्ञान कराओगे, इतना तो हो गया कि दिगंबर से तांबर दो टुकड़े हो गए, फिर दिगंबरों के दो टुकड़े हो गए, फिर मोक्षु और गैर मोक्षु दो टुकड़े हो गए, अब मोक्षुओं के भी दो टुकड़े हो गए, अब कहां तक भेद विज्ञान कराओगे, कितना तोड़ोगे समाज को, क्या आप समझे ना। मैंने उसको किस रूप में लिया उनने, और कितने जोश में उनने ये बात कही भरी सभा में। तो मैंने उसी में तत्काल जवाब दिया, अभी कहां तक आए हैं देव, अभी तो हमको राग से भिन्नो केवल ज्ञान से भिन्न, हमें तो वहां तक कराना है भेद विज्ञान, अब यहीं से घबरा गए। तो ये भेद का मतलब ये विघटन का धर्म है, देखे विघटन। तो मैंने कहा पंडित जी, धर्म के लिए विघटन चाहिए और समाज के लिए संगठन चाहिए, क्या समझिए ना। समाज में हम वो कहेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल अभ्यंजन तो भेद का विज्ञान है। एक तरफ आत्मा, एक तरफ हमें कोई नहीं चाहिए साथी, सब सामने वाली पार्टी में जाओ, और संगठन में सब हमारी पार्टी में आओ, बोलो। जैन धर्म विघटन का धर्म है या संगठन का धर्म है, है? ये बिल्कुल न्याय की भाषा में लिखा है। अब मैं बता रहा हूं आपको इसका, वो क्या कह रहे हैं कि जीव और कर्म दोनों मिलते हैं तो राग आदि पैदा होते हैं। इस शिष्य का प्रश्न ये है। तो वो आचार्य कहते हैं, उत्तर देखिए, न्याय शास्त्र का उत्तर है कि जीव और पुद्गल आत्मा और कर्म दोनों मिलकर के रागादि पैदा होते हैं, तो ये रागादि जैसे आत्मा को होते हैं वैसे पुद्गल को भी होना चाहिए। तो दोनों ने मिलकर किया तो फल भी दोनों में आना चाहिए। ये कितना बढ़िया तर्क है। हल्दी व चूना मिले तो हल्दी भी लाल हो गई, चूना भी लाल हो गया, चूना सफेद बना रहता, ऐसा कैसे होगा? क्या यदि ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो जीव में ही राग क्यों होता है, पुद्गल में क्यों नहीं होता? इससे मालूम पड़ता है दोनों ने मिलकर काम नहीं किया। आपकी समझ में ना, ये तो रागादि के मामले में हुआ। फिर कहा कि पौद्गलिक कारमान बजनाएं वो कर्म रूप परिणाम होती हैं, तो वे कैसे होती हैं? कि जीव के रागादि परिणाम होते हैं तब होती हैं, वैसे तो होती नहीं है। तो यदि वो कारमान वगणाएं कर्म रूप परिणाम होती हैं और जीव और पुद्गल दोनों से मिलकर होती हैं, तो जीव को भी कारमान वगणा रूप परिणाम होना चाहिए। तो जीव को पुद्गलत्व प्राप्त हो जाएगा तो जीव अजीव हो जाएगा, समझ रहे ना? वहां अजीब जीव हो जाएगा, माने पुद्गल में रागादि होना चाहिए और जीव में कारमान होना चाहिए, तो जीव को अजीब बनना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा मानोगे तो जीव को अजीब बनना पड़ेगा। इसलिए यही ठीक है कि जीव रागादि रूप अपने आप ही प्रणय में धोता है, पुद्गल का उसमें कोई, और कारमान वगैरह कर्म रूप अपने आप प्रणय में धोती है, उसमें जीव का कोई योगदान नहीं है। निमित्त तो है, कि निमित्त का नाम योगदान नहीं है। क्या अभी मैं थोड़ा उदाहरण देके बताता हूं कि एक महिला बहुत बढ़िया नृत्य कर रही है और उससे हमको उसके प्रति राग पैदा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उसने हमको लुभा लिया। अब वो ही महिला का चित्राम है, चित्र है कि उसकी संगमरमर की मूर्ति है। अब वो तो कुछ हिल भी नहीं रही है, वो बिल्कुल निष्क्रिय है, अब उसे देख के भी वही राग हो जाता है। तो इसका मतलब वो नाचती हुई महिला ने भी हमें राग नहीं कराया, वहां बिल्कुल निष्क्रियता है ना। वो तो हमारे अंदर राग था तो उसे देख के विकार पैदा हो गया। कि किसी को अरुचि भी पैदा हो सकती है, कोई वैराग्य प्रवृत्ति का हो, ये क्या किया है, क्यों हो सकती क्या नहीं हो सकती है। तो वो ये कहते हैं कि निमित्त का क्या है, निमित्त के ऊपर कुछ नहीं है, बस ये कहना चाहते हैं कि निमित्त नहीं है। अरे निमित्त तो है लेकिन निमित्त का कर्तृत्व तो नहीं है। देखो अब मैं पढ़ता हूं, अब मुझे पढ़ने दो। यदि जीव के राग आदि पुद्गल कर्म में भी हो यदि, तो जीव बत जड़ कर्म भी राग आदि मय हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के राग आदि, जड़ कर्म के बिना ही जीव के राग आदि होते हैं। अब जो उतना निमित्त निमित्त संबंध है उसको भी उड़ा रहे हैं, उसकी उड़ा नहीं रहे हैं, लेकिन तुम जो कर्तृत्व का भाव आ जाता है उसका योगदान 1% बिल्कुल 0% योगदान है, ये बताना चाहते हैं। किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के राग आदि हो, तब कर्म जड़ पुद्गल मई राग आदि मय कैसे बने? तो फिर पुद्गल राग आदि मय नहीं होगा, यदि होगा तो फिर राग आदि रूप में धोना पड़ेगा। यदि कर्म मय पुद्गल जरब द्रव्य का जीव साथ हो, तो जीव भी जड़ कर्म बद कर्मत्व को ही प्राप्त हो। किंतु जब जीव भाव बिन ही एक पुद्गल द्रव्य का यह कर्ममय परिणाम है, तो जीव जड़मय क्यों बने? देखो हिंदी, अब ये सरल हिंदी जो मैंने बताई आपको समझ में आएगी। जीव और कर्म के साथ ही राग आदि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित हो जाते हैं। ये है भाव। अब भी उसमें से तुम्हें भाषा ऐसी है कि नहीं निकलता है। अब ये निकाल के रखा तुम्हारी समझ में आ जाए। खूब माथा मान लेना नीचे आगे पीछे, जैसे इनको देख लेना, अमृत इनको देख लेना। बस ये रहस्य है, ये आधी पंक्ति में सारा खेल है। कौन सा? कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि पने को प्राप्त हो जाएं। परंतु रागादि भाव तो एक जीव ही परिणमित होता है, रागादि भाव रूप तो। इस कारण कर्मोदय हेतु रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव के जीव के परिणाम हैं। कितना क्लियर लिखा है। अब वो निमित्त बने का निषेध नहीं है, कर्तृत्व के निषेध की ये भाषा है। फिर इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं। ऐसा माना जाए तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मत्व को प्राप्त हो जाए। परंतु कर्म रूप परिणमित तो एक पुद्गल द्रव्य ही होता है, इस कारण जीव भाव के हेतु बिना ही कर्म पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। अब ये जैतून छाबड़ा का लिया, क्यों? वो भी यही लिख रहे, क्योंकि हमको इसमें शंका खड़ी होती है ना, ये तो अर्थ नहीं निकल रहा, जाता में से तो ऐसा नहीं निकल रहा, आपने ऐसा अर्थ कैसे कर दिया? तो जैतून छाबड़ा ने भी ऐसे ही किया देख लो, फिर हमने तुमने भी ऐसे ही किया देख लो, हम सब बताते हैं, फिर गुरुदेव ने भी ऐसे ही किया। ये सब बता रहे आपके लिए कि देखो यही अर्थ है, सब ज्ञानियों ने ऐसा ही अर्थ किया। यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हों, आगे ना मिलकर परिणमते तो दोनों रागादि रूप होना चाहिए, किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप कभी नहीं परिणम सकता, इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि रागादि परिणाम का निमित्त है उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। इनने कह रहा कि तुम निमित्त ही नहीं उड़ा दो, तो इनने उसमें निमित्त भी रख लिया, निमित्त कहकर निमित्त तो है लेकिन वो मिलके नहीं परिणमते, ये दोनों के मिले हुए का काम नहीं है। अभी जो जरा लोग को उदाहरण दूं कि एक बच्चा माओ बाप दोनों से मिलकर बनता है, यदि ये माने तो जैसे मां को गर्व रहा बाप को भी गर्व रहना चाहिए। क्या ऐसा होता नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा कि ये मां ही बच्चे रूप परिणमित, मां का खाना खून वून सब वो तो बच्चे रूप नौ महीने में तक बराबर जो हुआ ना वो हुआ है, और पिता तो निमित्त मात्र है। क्या समझे ना, पिता तो निमित्त मात्र है, इसलिए लोक में भी पिता को निमित्त ही माना जाता है। और मेरा वो प्रसिद्ध उदाहरण है, जिन लोगों ने सुना होगा कि जब रामचंद्र जी अपनी मां कौशल्या के पास गए और ये सुनाने के लिए कि अहम गमस्यामि महाबनम, हे माता मैं भयंकर जंगल में जा रहा हूं, समझे ना, तो वाल्मीकि रामायण में एक छंद लिखा है, क्या लिखा वाल्मीकि रामायण में, कौशल्या जवाब देती है, दशरथात मई जाता, हे दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम, ऐसा वहां लिखा है वाल्मीकि रामायण में। क्या लिखा, दशरथात मई जाता, यानी मुझ में पैदा हुए लेकिन दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम, अब तुम ऐसा नहीं करो मैं जंगल में मत जाओ, जो भी उसने फिर बाद में कहा होगा, मुझे तो इतने से ही मतलब है कि वो कहे दशरथात मई जाता, तो दशरथ है निमित्त, तो मां हुई उपादान, वैसे तो आत्मा उपादान है हा? लेकिन मां हुई उपादान समझे ना, और दशरथ हुआ निमित्त, اب یہ سمسیا کھڑی ہوتی ہے کہ نعمت تو کچھ کرتا نہیں ہے, اس کا سب کچھ کیا, وہ ماں نے کیا, 9 مہینہ پیٹ میں رکھا, کھانا بھی ماں کا گیا اور سب چیز ماں کی ہی رہی اس میں, خیال نہیں. تو پھر بیٹا باپ کا کیوں, ماں کا کیوں نہیں؟ ماں نے بلدیت میں باپ کا نام کیوں لکھا جاتا ہے؟ باپ کا گوتر بیٹے کا کیوں مانا جاتا, ماں کا گوتر بیٹے کا کیوں نہیں؟ پاٹنی کا لڑکا اور کاسلی بال کی لڑکی, ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ پاٹنی ہوگا کہ کاسلی بال, بولو؟ یہ سمان ہے نا کہ باپ کے ہی نام پہ رہتا ہے, ماں کا نام ہی نہیں رہتا ہے. اب آج کل تو لوگوں کو اعتراض ہونے لگ گیا, اب ایسا نیم آنے والا ہے دونوں کا نام لکھنا پڑے گا, لکھا جا رہا ہے نا. ابھی کیا کریں, ابھی اپن کو تو ادھار سے کام چلانا ہے نا, اپن تو وہی چلیں گے نا, اپنا تو اس سے ہی کام چلائیں گے. تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ ماں اور پتا دونوں کو اس بچے میں اپنا پن ہونا چاہیے. تو ماں کا اپنا پن تو اس لیے ہوگا کہ 9 مہینہ اس نے پیٹ میں رکھا ہے, اسے پیدا ہوا, اس نے دیکھا کہ میرا بچہ ہے, یہ پکا پرمان اس کے پاس ہے اور سارے جگت کے پاس ہے. لیکن اس کا باپ کون ہے, اس کا کیا پرمان ہے, بولا نا؟ نہیں کچھ سمجھنا. یدی اس کو ادھکتم مہتو نہیں دیا جائے گا تو اس کو شنکا بنی رہ سکتی ہے. اور ہر ایک آدمی اپنا سروس سمرپن اپنی سنتان کو کرنا چاہتا ہے, اسے شنکا ہو گئی کہ یہ میری سنتان نہیں ہے تو دن نہ رات کھٹ کھٹ کے مر کے کروڑوں روپیہ اکٹھا نہیں کرے گا اس کے لیے. کیا خیال میں آئی نا, کون کھانے والا, کوئی ہے تو ہے ہی نہیں ہے. ارے کھانے والے بہت ہیں, دیش میں کماؤ نا. نہیں آیا تو اس پتا کو کیسے پہ؟ تو ماں کو تو پتا ہے نا, تو اس نے بتایا تو نام کے پتا کا نام لکھو, اس کا ہی گوتر رکھو, ایسا رکھو کہ اس کو اس میں اپنا پن رہے. ماں کے ساتھ کوئی سمسیا نہیں ہے لیکن پتا کے ساتھ سمسیا ہے. تو انہوں نے پتا کا نام ہٹا کے اکیلے ماں کا نام رکھنا شروع کر دیا تو کوئی پتا اس کو پالنے کی ذمہ داری نہیں لے گا. تو ہمارا جو پوری دنوں نے بہت ویگیانک طریقے سے اس بات کو کیا ہے, تو یہ سمجھتے نہیں ہیں تو یہ غلطیاں کریں گے تو تکلیف اٹھائیں گے. امریکہ والے ماں باپ کو چنتا ہی نہیں کرتے ہیں. ہم نے بسمت پرکاش جی نے بتایا تھا کہ بل گیٹس کہتا میں تو دے جاؤں گا اس کمپنی کسی کو, تیرے بیٹے کو کچھ نہیں دوں گا. کیوں؟ مجھے لاگ ہی نہیں ہے, بھروسہ ہی نہیں ہے کہ میرا ہے تو دے گا کیا. وہ 25-6 دگے جاتی ہے شادیاں کرتی ہے, 6 ماں باپ 6 شادیاں کرتا ہے, اب اس کا بیٹا نوالوں کہاں ہے, وہ یہ کس کا بیٹا ہے پتا ہی نہیں ہے. تو اس سے اس کو اس کو کوئی اپنا پن اس کے ساتھ نہیں ہوتا. جیسا راگ ہندوستان کے ماں باپ کو اپنے بیٹوں سے ہوتا ہے, کیوں؟ ساتھ میں نرک جانے لائق پاپ کر کے بھی وہ ڈنڈا مار مار کر جو پٹائی کرتا ہے باپ کی, ایسے بیٹے کو بھی کتنی کمائی کر کے اس کو ہی دے کے جانا چاہتا ہے. کیوں؟ کتنا پکا انتظام کیا ہمارے پورجوں نے, ہمارے اندر وہ ڈال دیا کیا کہ تیرا بیٹا پاپا بابا. اپنے پتا جی بولتے تھے نا پہلے زمانے میں, آج کل کیا بولتے ہیں؟ پاپا کا ارتھ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. سمجھ سار میں لکھا ہے وجے جی, کیا لکھا ہے معلوم؟ کل سناؤں, تے ادیاپی پاپا بے آج بھی پاپی ہیں. ہے کہ نہیں لکھا؟ سمجھے بولو کون, کس کو یاد ہے چندے؟ ہے کسی کو یاد چندے جس میں یہ لکھا تے ادیاپی پاپا؟ اوپر کو پھلایا ہے مکھ جس نے اور پھلائے ہیں گال جس نے, کیوں؟ اور ایسا سمتی پرنتام پالن ایسا ایسا مجھے وہ تو میں نے یاد تو کبھی کیا نہیں لیکن ایسا یاد رہتا ہے, تو بیچ بیچ کی پنکتیاں یاد رہتی ہیں اس کا. سمیک درشٹی اہم, میں سمیک درشٹی ہوں, ایسا مان کر گردن اٹھائی ہے جس نے اور پھلائے ہیں گال جس نے, اور جس کریا سمتیوں کو پالتا ہے مہاورتوں کو پالتا ہے لیکن وہ آتما کو نہیں جانتا ہے, تے ادیاپی پاپا بے آج بھی پاپی نہیں, پاپا ہیں. پاپی اور پاپا میں کیا فرق ہے؟ کہ پاپ سروپ ہیں وہ. پاپی تو پاپ الگ ہو گیا اور بے الگ ہو گئے. تو دونوں الگ پاپ ہی ہیں. دیکھو ٹھنڈ پڑتا ہوں میں, ہندی کا پڑھ دوں ٹھیک رہے گا نا. میں سوئم میں سمک درشتی ہوں بند سے برہت صدا, یہ مان کر ابھیمان میں پلکت بدن مستک اٹھا, جو سمتی عالم میں مہابرت آچرے پر پاپ میں. یہ پاپا کا ہے. دیکھے مور جیووں کا ارے جیون نہیں ادھیاتم میں. کتنا بھیا سرل انوار ہے. میں خود ہی نیند نیند جاتا ہوں. میں نے کم سے کم 1000 بار تو اس کلش بدانے بات کو سنا ہوگا. جب بھی میں یہاں سے اپنی کار میں جاتا ہوں, اس لوب میں جاتا ہوں, تو میری اور میں پتنی رہتے ہیں, یہ 1 سیکنڈ بند نہیں کرتے. وہ لگا دیتے ہیں سی ڈی اور یہاں سے 6 گھنٹہ بیٹھے تو 6 گھنٹے سنیں گے, اور 8 گھنٹے بیٹھے تو 8 گھنٹہ سنیں گے, 2 گھنٹہ بیٹھے کچھ نہیں, 1 سیکنڈ نہیں, 2 منٹ بند کرے ڈرائیور تو نہیں یہ چالو کرے بول کچھ نہیں چلتا رہتا. مجھے آنند آتا. کیوں؟ جیسا کل کل کہا تھا کسی نے کہ ہم کو بھاو خیال آتا. دیساگر نے کہا تھا میں پاٹھ کرتا ہوں تو بھاو خیال میں آ جاتا, ارتھ دیکھنا نہیں پڑتا نیچے ہندی میں, تو ہم کو ارتھ دیکھنا نہیں پڑتا. ہم نے ہی لکھا ہے, ایک روم روم میں کلی کلی کھلتی ہے. سنسکرت میں لکھا ہے تے ادیاپی پاپا, پاپا مانے پاپ میں ہیں. اب یہ سب گھر میں پاپا, گھر میں پاپا ہو گیا سر. اب آپ کو بہت اچھا لگتا ہے دادا جی پتا جی کہیں تو اچھا نہیں لگتا, پاپا کہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ سچی کہہ رہا نا بیٹا. یہ کیا آ گیا ہے یہ ہائے ہائے پاپا, یہ ہائے ہائے کرتے. اب یہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ آ گیا, میں نے اپنے باپ کو زندہ مانتے ہی نہیں. کیا میں نے ان کا استتو انہیں سویکار نہیں ہے. کیوں؟ تو انہیں اپنا پن ہی نہیں ہے. اپنا پن ہوئے کیسے؟ بھروسہ ہو نا تب. تو نمت کی کتھن میں اتنی ادھک مکھتا ہے کہ نام باپ کا سب جگہ لکھا جاتا کتھن میں, اور ہونے میں بالکل نہیں ہے. تو وہ اس کلاجے گاتھاؤں میں کیا کہا کہ یدی بھیا دو ہی مل کے کریں تو آتما کو کرم روپ پرن میں دھونا پڑے گا, اور پودگل کرم راگادی روپ پرن میں جائے گا. پودگل کرم راگادی روپ نہیں ہوتا اور آتما کرم روپ نہیں ہوتا. اس سے معلوم پڑتا کہ جیب کے پرنام جیب میں ہوتے ہیں اور کرم کے پرنام کرم میں ہوتے ہیں.